मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 19 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन प्यारे दोस्तों के नाम हैं अन्नपूर्णा राजपूत, आप ग्राम रतनपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अनुपमा यादव, आपका गांव है आजमपुर, जिला है आजमगढ़ और आप उत्तर प्रदेश से हैं। शालिनी गुप्ता, आपका गांव है बिलथरा रोड, जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश। सावन कुमार पटेल, आपका गांव है अमरा खैरा चक, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कन्हैया अहिरवार, गुना मध्य प्रदेश से। रूपांशी मिश्रा, जबलपुर मध्य प्रदेश से। नबीन संतरा, कमरपुकुर पश्चिम बंगाल से। दीपक कुमार, आपका गांव है तारवन, जिला है गया बिहार से। बबलू कुमार दास, आपका गांव है नियामतपुर, जिला है गया बिहार से। नम्रता राजवत, आपका गांव है बंथारी, जिला है भिंड मध्य प्रदेश से। और सचिन कुमार कश्यप, आपका गांव है बड़ौत, जिला है बागपत, उत्तर प्रदेश से। तो अन्नपूर्णा, अनुपमा, शालिनी, सावन, कन्हैया, रूपांशी, नबीन, दीपक, बबलू, नम्रता और सचिन, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। सच पूछिए मित्रों, जब मैं आप सबके गांव का नाम लेता हूं तो मेरे शरीर में हल्की सी, यूं कह लीजिए, कुछ सिहरन सी हो जाती है गांव के नाम पर। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों होता है। और मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि अगर आप लोगों के गांव का नाम सही सही उच्चारण करने में मुझे कोई दिक्कत हो रही हो या गलत उच्चारण कर रहा हूं तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, रोमन लिपि में गांव का नाम होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका सही सही पाठ कर पाना कठिन काम होता है। लेकिन मुझे इस बात की अब वास्तव में बेहद खुशी है कि आप सब अपने गांव का नाम लिखने लगे हैं। कम से कम हमें अपने गांव के प्रति इतना दायित्व तो निभाना ही चाहिए कि हम अपने गांव के नाम को इसी माध्यम से ही सही लेकिन देश के लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा माफी नामे के साथ कि मैं शायद सही सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। और बेहतर होगा कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अपने गांव का जो नाम है वो देवनागिरी लिपि में भी लिख दें, देवनागिरी लिपि में है, तो फिर तो उसमें तो उच्चारण बिल्कुल सही अपने आप हो ही जाएगा। खैर मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग थोड़ा सा राजकोषीय घाटे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए न्यूज एनालिसिस के तहत दूसरी चीजों को देख लेते हैं। और आज बात करने के लिए काफी न्यूज है। देखिए कि हम राजकोषीय घाटे को कितना समय अपन लोग दे पाते हैं। मित्रों, ये मैं आप लोगों को बार बार कहता रहा हूं और माफी चाहूंगा कि मैं आगे भी कहता रहूंगा, चाहे आप लोग नाराज हों या खुश हों या तटस्थ रहें। और वो ये कि देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को आप घंटों से मत जोड़ करके देखिए, आप रटने से जोड़ करके मत देखिए, आप सिलेबस से भी जोड़ करके मत देखिए, यानी कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया है तो मेरी तैयारी पूरी हो गई है, नहीं। इसको आपको क्वालिटी से जोड़ करके देखना होगा, सिस्टम से जोड़ करके देखना होगा, पद्धति से जोड़कर देखना होगा, यानी कि तैयारी तो आपकी हो गई है, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, जो जो किताबें बताई गई थी वो आप पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप उस पद्धति से जानते हैं या नहीं जानते हैं जिस पद्धति की जरूरत यूपीएससी को है। ये बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना बात बनती नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे कल आपने डेफिनेटली न्यूज सुनी होगी, न्यूज में देखे कि एक बहुत अच्छी बात थी और वो ये एक आंकड़ा बताया गया। वो आंकड़ा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर के, जिसे हम DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप लोगों को मालूम होगा, ये 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था, यानी कि उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। ये मतलब अभी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया नहीं है, लेकिन इस सरकार ने एक करिश्मा इसमें किया है कि जन धन खातों के माध्यम से पूरे देश के लोगों के उन्होंने अकाउंट खुलवा दिए, एक ड्राइव करके, एक आंदोलन करके कह लीजिए, क्रांति करके। क्योंकि देखिए डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है वो है क्या, वो ये है कि सरकार अपने लोगों को जो भी डायरेक्ट बेनिफिट देती है, किसे आप डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं, जैसे किसी को सब्सिडी दिया जा रहा है तो वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, किसी को और किसी मायने में कोई पैसा दिया जा रहा है डायरेक्ट दिया जा रहा है, जैसे किसी को मान लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तो वो डायरेक्ट फायदा दिया जा रहा है। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, मतलब पैसों के रूप में दिया जा रहा है, वह सीधे सीधे उनको दिया जाए, तो यहां डायरेक्ट दोनों को इंडिकेट करता है, जो फायदा दिया जा रहा है उसको भी और जिस तरीके से दिया जा रहा है उसको भी। तो होता यह था कि भ्रष्टाचार के कारण उनको सारी रकम नहीं मिल पाती थी, जैसे मनरेगा का ही ले लीजिए तो मनरेगा की मजदूरी उनको नहीं मिल पा रही है, तो एक अकाउंट के कारण क्या हुआ है कि अब सरकार सीधे उनके खाते में पैसा भेज देती है, तो खाते में पैसा भेजने के कारण जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए, तो भ्रष्टाचार कम हो गया। अब आप देखिए कि अगर आप ये बात लिख रहे हैं सिविल सर्विस में, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि क्या आप मानते हैं कि इससे फायदा हुआ है, और आप लिख रहे हैं कि हाँ इससे फायदा हुआ और इस तरीके से फायदा हुआ, तो कल न्यूज में आपको एक बड़ा खूबसूरत डेटा मिला है, बड़ा खूबसूरत डेटा है और वो आपको नोट कर लेना चाहिए। न्यूज में ये डाटा था कि सरकार ने अब तक 4,00,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए हैं, 4,00,000 करोड़ रुपए। और जो दूसरा डेटा है इसी से जुड़ा हुआ है, को इससे लगभग 90,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है, 90,000 करोड़ रुपयों की बचत। यानी कि अगर हम पुराने पैटर्न पर जाएं तो 4,00,000 रुपए की जो वैल्यू है, आप यूं कह लीजिए कि हम सरकार ने 5,00,000 रुपए उन्होंने दे दिए, क्योंकि ये जो 90,000 करोड़ रुपए बचे ये पब्लिक के लिए बचे ना, पब्लिक के लिए, इसका तो और उपयोग हो सकता है। तो देखिए कितना अच्छा डेटा है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। और अगर अभी आप अक्टूबर के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत प्रभावशाली डेटा है, ये शो करेगा कि नहीं ये जो स्टूडेंट है, जब आप एग्जाम में लिखते हैं कि नहीं ये जो स्टूडेंट है बहुत अलर्ट है, चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील है, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि है और वो चीजों को छांटना जानता है, और किन चीजों को छांट करके दिमाग में कैसे रखना चाहिए और कब उपयोग करना चाहिए वो ये भी जानता है, तो सिविल सर्वेंट बनने के लायक है, सीधी सी बात है। दोस्तों इसी के साथ ही एक और खबर थी, इस बार के आप सिविल सर्विस प्री का एग्जाम देखेंगे या पिछले 2-3 साल के भी आप देख लीजिए, तो एक खबर थी क्रीमिया, यूक्रेन और रूस को लेकर, और वो खबर ये थी कि यूरोपीय संघ ने जो प्रतिबंध लगाए थे क्रीमिया यूक्रेन पर उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, राइट, ये एक खबर है। अब आप इस खबर को कैसे समझेंगे, क्या सुन करके छोड़ देंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना यह चाहिए कि अगर यूरोपीय संघ ने 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाए हैं तो आप देखिए कि भाई इस पर प्रतिबंध लगाए क्यों गए थे, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्रीमिया क्या है, यूक्रेन क्या है, रूस का क्या है, क्रीमिया अभी किस देश में है, यूक्रेन अलग से कोई देश है या वो रूस का ही हिस्सा है, ये आपको कन्फर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में तो कम से कम पूछे जाते हैं। तो मैं ये होमवर्क आप पर छोड़ रहा हूं, चूंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं इसके बारे में क्लियर करूं, तो कुछ तो आप भी थोड़ा सा अपना वक्त इस तरह के रिसर्च वर्क में लगाएं तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर होगा, आप लोगों के अंदर की जड़ता टूटेगी। तो मित्रों दूसरी ये इंपॉर्टेंट खबर थी कल की, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि जो सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो भोपाल में खुलने वाला है, भोपाल में खोला जाएगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर, चूंकि नेशनल लेवल का है तो एक नेशनल न्यूज भी है, इसलिए नेशनल न्यूज बनी भी वो, लेकिन खासकर भोपाल मध्य प्रदेश के लड़के जो स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर हो गई, उनके लिए तो आप ये मान के चले कि हेडलाइन ही है। तो इस तरीके से ना आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है वो लगातार अलर्ट होकर के करते रहनी पड़ती है, और फिर लगातार सतर्क रहना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मित्रों, मैं अब आप आता हूं मुख्य विषय पर, जो मैंने राजकोषीय घाटे की बात कही, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इससे पहले भी मुझे मालूम है कि राजकोषीय घाटे पर मैं बात कर चुका हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब राजकोषीय घाटे के माध्यम से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के बारे में भी बात करूंगा। देखिए, जो हम इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं मैं। एक तो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की मूलभूत जानकारी प्राप्त करना, जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, है ना, जीडीपी क्या है, ये सारी जो डेफिनेशन है ये मालूम होने चाहिए। और केवल डेफिनेशन मालूम ही नहीं होने चाहिए, बल्कि समझ के साथ मालूम होने चाहिए। इस बार आप कुछ क्वेश्चंस उठा करके देखिए जो इकोनॉमिक्स पर पूछे गए हैं, कि किस तरीके से वो इकोनॉमिक्स को ऊपर लेते हैं, स्टेटमेंट के रूप में इकोनॉमिक्स को लेते हैं, राइट। और जो आपको विकल्प देते हैं वो इकोनॉमी से ले लेते हैं, यानी कि उसके अप्लाइड फॉर्म से ले लेते हैं, उसके व्यावहारिक पक्ष से ले लेते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम है तो आप व्यावहारिक वाले वाक्यों को समझ ही नहीं पाएंगे जो उन्होंने विकल्प दिए हैं। और मजेदार बात है कि अगर आपको व्यावहारिक पक्ष नहीं मालूम है तो ऊपर को नहीं समझ पाएंगे कि ये कह क्या रहा है। तो यानी कि दोनों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आप इसे इस भाषा में भी कह सकते हैं कि आपको अर्थशास्त्र के व्यावहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र होगा, उसका ज्ञान चाहिए, लेकिन उसके व्यावहारिक पक्ष का भी ज्ञान, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिए, स्थानापन्न नहीं कि दोनों में से किसी का भी, ये बहुत जरूरी है। जैसे अब राजकोषीय घाटे की बात आई और ये आया कि सरकार ने कहा, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि चालू वित्त वर्ष का मतलब है करेंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, कौन सा है चालू वित्त वर्ष, 2018-2019, 1 अप्रैल से 2018 का वित्त वर्ष शुरू हो गया है जो मार्च लास्ट तक चलेगा, जो 19 में जाके खत्म होगा, तो यह हमारा चालू वर्ष। इसमें उन्होंने कहा है कि 3.3% तक सीमित रखने का विचार है, हम देखेंगे कि 3.3% तक सीमित रखें। तो देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है, आप बड़े सरल शब्दों में आप कहें तो राजा का जो खजाना है उसका घाटा, राज है ना, राजकोषीय, राजा राज्य भारत, देश का हमारा जो कोष है, जो खजाना है, जो अकाउंट है कह लीजिए सरल भाषा में, उसका घाटा, यानी कि 3.3 का अगर आप इसे व्यावहारिक में ले लें तो सरकार 100 रुपए कमाएगी और बदले में 103 रुपए और 30 पैसे खर्च कर देगी। इसका मतलब यह हुआ कि उसको 3 रुपए 30 पैसे का घाटा हुआ, बस कुल मिलाकर के ये राजकोषीय घाटा है, बस और कुछ नहीं है, राइट। तो देखिए, अब होता क्या है कि इतने तक सीमित रखने के लिए सरकार चिंतित है क्यों, या सरकार इतना खर्च करती ही क्यों है? भैया 100 रुपए कमाए हो तो 100 रुपए खर्च कर लो, हमारे यहां सिखाया भी जाता है कि जितनी कमाई हो उससे अधिक खर्च मत करो, तो सरकार भी ऐसा कर ले, लेकिन नहीं। तो सरकार, याद रखिए कि बिजनेसमैन नहीं है, सरकार बनिया नहीं है, सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, और सरकार इंडिविजुअल भी नहीं है कि हमें जितनी सैलरी मिलेगी भैया उतने में ही घर चलाना है। सरकार और खासकर एक वेलफेयर स्टेट, जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। याद रखिए कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं ये भी लोगों के कल्याण के लिए ही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ठीक है आर्थिक विकास के लिए है, लेकिन आर्थिक विकास किसके लिए है, लोगों के कल्याण के लिए। सरकार को स्कूल खोलने हैं, सरकार को हॉस्पिटल बनाने हैं, तो ये सब के सब वेलफेयर वर्क्स, तो सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए। तो सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा खर्च कीजिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खर्च सरकार कर देगी तो क्या होगा, उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, और जब कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा तो जो कर्ज से परेशानी होती है आगे चल करके, वही परेशानी सरकार को हो जाएगी, और जब सरकार को उस तरह की परेशानी होगी तो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था में एक भूचाल सा आ जाएगा, एक हलचल सी पैदा हो जाएगी। मित्रों, अब ये सारे जो हिस्से मैंने आपको बताए कि मुद्रा क्या, अगर सरकार ज्यादा खर्च करती है, यानी कि 3.3% से मान लीजिए कि 6.6% कर देती है, तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए किताब पढ़ने के बाद कि उसका क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा, सरकार फिर इस घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय करेगी, जो उपाय करेगी फिर उसका क्या प्रभाव फिर से अर्थव्यवस्था पर होगा, इन सब पर अब आप लोग अपने अपने ढंग से थोड़ा सा विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स। मित्रों आज मैं खासकर आपका ध्यान दो क्लिपिंग्स की ओर दिलाऊंगा। एक है देसी बाजार बचाने का यक्ष प्रश्न, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का है। आप लोग प्लीज इसे डेफिनेटली पढ़ें, ये बहुत अच्छा क्लिपिंग है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और दूसरा मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एनवायरमेंट पर दे रहा हूं। सुनीता नारायण जी का है, जमीन और पानी के कुप्रबंधन से आते जा रहे हैं तूफान। ये दोनों आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा और कोशिश कीजिए कि इसे आप अपने पास रख भी लें जो ताकि आप आगे इसका इस्तेमाल कर सकें। मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं अंकित कुमार सचान, छेलू सिंह, मुकुल घोष धनबाद बिहार से और हर्ष दीक्षित। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।